भगवते वासुदेवाय
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्याभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आज ये कालीबाड़ी तो ये पूना नगर के कालीबाड़ी क्या है कस्बा क्षेत्र के जो आप आदिवासी हैं आपने पीछे ठाकुर जी क्या नाम है
राधा कृष्ण चंद्र
श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र के अनुयायी उनके शरण में आप लोग जो आए हैं आज के पुरुषोत्तम पावन पुरुषोत्तम मास के इस रविवार के सायं कार्यक्रम में और मुझे सूचना प्राप्त हुआ है कि लगभग चार दिन आज से लेकर के संडे मंडे ट्यूजडे बुधवार तक प्रत्यह इसी समय में
जल्दी
आज लेट हो गया लगभग 7:30 बजे से
9:30 बजे
तक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आप जितने आए हैं और आगे जो आएंगे आशा करते हैं जो आए हैं वो आप ही सब आएंगे सभी को इस्कॉन पुणे की तरफ से पुणे के देव मंदिर ही राधा कुंज भी हरि राधा वृंदावन चंद्र और इस्कॉन वृंदावन की तरफ से सभी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण और श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री नीता गौर सुंदर श्री प्रभुपाद के श्री चरण में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को उनके भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मुझे तो दो दिन पहले सूचना दिए प्रभु जी ने कि यहाँ ध्रुव चरित का कुछ आलोचना करने के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक आख्यान है, अनेक चरित है। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, उन्होंने जब श्री धामपुरी में संन्यास वेश में रहते थे तो उनका ये दिनचर्या था। प्रतिदिन वो सायंकाल में भागवत कथा श्रवण करते थे। तोटा गोपीनाथ में गलाधर पंडित वक्ता होते थे, महाप्रभु उनके पास सतगुण श्रोता होते थे। प्रतिदिन उनका ये नित्य प्रति का टाइम था सुनने का। तो और उनके समय तो इस प्रकार भागवत के श्लोक पढ़ना, उनके अनुवाद, फिर उनका शब्दानुवाद, फिर उनका तात्पर्य, ये सब स्थान है। मूल श्लोक को पढ़ने से वो लोग सब इतने समर्थ थे कि वो समझ पाते थे, और भी फिर इसके ऊपर कुछ चर्चा करते थे कभी कभी अवसर। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लगभग उनके आधा उम्र तक श्री धामपुरी में रहे, और प्रतिदिन का ये सेवा था भागवत श्रवण। उन्होंने बोल बोल करके आग्रह प्रकाश करके भागवत श्रीमद् भागवत के विशेष जो आख्यान सुनना चाहते थे, बहुत आग्रह करते थे, और प्रार्थना करके इसी चरित को सुनना चाहते थे। दो चरित भागवत में जिनको कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु सौ सौ बार सुने फिर भी तृप्ति नहीं होता था उनका, बोलते नहीं और सुनना चाहिए। सौ बार सुनने के बाद भी उन्होंने आग्रह प्रकाश करते थे ना ना ना, फिर उसी को सुनाएंगे। आप बोलेंगे महाप्रभु तो रसिक शेखर श्री वृंदावन चंद्र है, श्री कृष्ण भगवान है, जरूर भगवान की महिमा में ही दसम स्कंध के रासलीला आदि के श्रवण किए होंगे, गोपी गीत वेणु गीत आदि के। नहीं, सबसे गंभीर ज्ञान के प्रसंग उद्धव गीत आदि सुने होंगे। नहीं नहीं, और बोले अनेक अनेक भागवत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसंग है किसको सुने होंगे। बोले नहीं, जो दो चरित को उन्होंने हमेशा आग्रह प्रकाश करके सुनना चाहते थे, उस दो चरित है भागवत में बड़े प्रसिद्ध, एक ध्रुव चरित एक प्रह्लाद चरित। तो उसमें क्या विशेषता है कि साक्षात भगवान भी सौ सत सत बार सुनने पर भी तृप्ति नहीं होता था उनका। हम लोग को एक बार प्रहलाद जी का कथा तो सब जानते हैं, ध्रुव जी का कथा तो कई बार सुने। हम लोग जैसे नालायक हुड़वक है, श्री भगवान स्वयं उनको क्या पता नहीं, उन्होंने जिक्र करके सत सत बार इस चरित को सुनते हैं और सुनाते भक्त। क्यों? क्योंकि यही दोनों ही चरित इतने प्रभावशाली है कि दोनों बाल भक्त है। बिल्कुल पांच साल की उम्र में एक पांच साल की उम्र की बच्चा किस प्रकार अपने भजन के प्रभाव से भगवान को वशीभूत कर देगा, ये इस चरित में देखा जाए। अद्भुत चतुर्थ स्कंद भागवत में श्री ध्रुवचरित, सप्तम स्कंद भागवत में श्री प्रह्लाद चरित, दोनों बाल भक्त प्रसिद्ध है। उन दोनों में भी प्रह्लाद जी का तो है कितने कितने कठिन का सामना नहीं किए। एक पांच साल के नादान लड़का को उनके विपक्ष में उनके पिता और पूरे साम्राज्य केवल उन सभी उनके विरोध में उनको हर प्रकार के मारने के प्रयास किए थे, सफल नहीं होता। ना उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र था, ना कोई कावार था, ना कोई उनका सपोर्टर था, कुछ नहीं था। क्या बल था उनका, कि ससागरा धरा साक्षात सम्राट हिरण्यकशिपु समेत, हिरण्यकशिपु की आंख उठाकर देख दे देवता अब तक कतरा जाए, ऐसे पराक्रमशाली सम्राट कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 5 साल के निहत्ता बालक, क्या शक्ति था उनका? कुछ नहीं, केवल हरि नाम के सहारे, बाकी कुछ नहीं था उनके पास। वो तो इतने कुछ करने के बाद और भगवान बड़े विकराल रूप लेकर नरसिंह रूप लेकर प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव जी का कुछ अनोखी चरित्र, उन्होंने भी बाल भक्त रहे, इन दोनों के ही गुरु नारद जी हैं, दोनों बाल भक्त, और उन्होंने तो कुछ नहीं किया, घर में कुछ झगड़ा हुआ, पारिवारिक समस्या लेकर के मन मिटाव करके अभिमान करके घर से निकल पड़े भगवान के लिए, और जाकर के केवल 6 महीना में भगवान को सामने खड़ा कर दिया। विदिन 6 months तो किस प्रकार की, जब हमारे जैसे एक बालक केवल 5 साल के उम्र में, वो केवल 6 महीना में अकेले, जो कुछ नहीं था, 5 साल की उम्र के बालक आजकल तो एडमिशन कराते हैं स्कूल में, है ना, नहीं क्लास 1 में पढ़ने जाते, क्या जानता है, क्या थिंकिंग, क्या बोली, क्या क्या है उनका। वो अपने प्रभाव से केवल 6 महीना में भगवान को सामने कर दिया। उसको सुन करके हम जैसे लोगों का भी मन में बड़ा बल प्राप्त होता है। ऐसे कहा गया है शास्त्र में कि इस बद्ध अवस्था से, संसार से मुक्त पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए केवल भगवान की भक्ति के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है, कोई उपाय नहीं, भगवत भजन ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा इस भव सागर को पार किया जा सकता है, जिसके द्वारा इस संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इस तरफ जगह है, बैठ सकते हैं आराम से, यहां जो आते हैं उनको जगह छोड़ के यहां आ जाए। तो क्या बोला था,
भक्ति एकमात्र साधन है,
हाँ, केवल भक्ति के द्वारा ही इस बंधन से मुक्त प्राप्त किया जा सकता है। तो वह भक्ति है क्या? भगवान की सेवा। तो साक्षात श्री भगवान की सेवा करना जो भक्ति है, वो भी 9 प्रकार की है। श्रवण से शुरू करके आत्मनिवेदन पर्यंत 9 धा भक्ति है, भगवान की भक्ति के विशेष 9 प्रकार। उसको करके, साधन करके, भजन करके हम भक्ति के रास्ता में भगवान के जितने नजदीक होने के प्रयास करेंगे, हम सब कर ही रहे हैं, हमको पता है, जितने हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, जितने हमको मिलना चाहिए मन में तृप्ति कि हम इतना कुछ किए नहीं प्राप्त हो रहा है, भगवान की भजन करके, भगवान के बारे में सुन करके, भगवान को पूजन कर इतना नहीं हो पा रहा है। इससे देखा गया है, सुना गया है कि भगवान को छोड़ करके भगवान के भक्तों का कथा सुनने से, उनके सेवा करने से बहुत जल्दी आप इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। केवल इतना ही नहीं, शास्त्र में कई जगह पर इस बात को उल्लेख किया गया है कि ये भगवत वाक्य स्वयं है, भगवान स्वयं कहते हैं, सिद्धिर भवति वा नेति संशय अच्युत सेविना, अच्युत भगवान स्वयं कभी जिसका पतन नहीं होता, जो चाहे करने के लिए वो करें, भगवत इच्छा हरि इच्छा बलवान, ऐसे अच्युत श्री हरि उनके सेवा तन मन धन से कोई करे, इस साधन के द्वारा उनके सिद्धि होगा, बोले कोई गारंटी नहीं, सिद्धि भवती बानेती, हो सकता नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं। श्री भगवान के सेवा पूरी लगन से कोई करे तो उनका काम बन जाए, इसमें कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अच्छा ना, बहुत सिद्धि भवती बानेती संशय अच्युत सेविना, अच्युत सेवा में सिद्धि होगा कर बोला डाउट है, संशय दूसरी लाइन में कहते हैं असंशयंतु तद भक्ता परिचर्यार्थ आत्मना, लेकिन इसमें तो संशय की बात छोड़ो, संशय करने का सवाल ही नहीं उठता, संशय की सवाल ही नहीं उठता कि सिद्धि होगा या नहीं होगा, क्योंकि 100% गारंटी है सिद्धि का। किसमें भाई? अगर उन श्री अच्युत हरि के भक्तों का सेवा अगर करें, उनके परिचर्या में लग जाए तो 100% गारंटेड है कि आप सिद्धि होगा ही। अगर हरि के सेवा में लगे तो डाउट है, लेकिन जो हरि के हो चुके हैं उनके अगर सेवा में लगे तो फिर संशय करने का डाउट, 100% गारंटेड। और भगवान अनेक स्थान में बात कहते हैं कि यद्यपि मैं अजीत हूं, किसी उपाय से मैं अजय हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन मैं मेरे मुख से हाथ उठाकर घोषणा करता हूं, मैं तो मेरे भक्तों के हाथ में हार जाता हूं, भक्तों के सामने बराबर हारता हूं हर प्रकार से। मद भक्त अधिक, मद भक्त पूजा अधिक, हर प्रकार से घोषणा करता। तो अभी आप लोग सुधीजन ने डिसाइड कीजिए कि आप इस हारे हुए भगवान की सपोर्ट करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, या जीते हुए भक्तों के बारे में सुनेंगे। वो स्वयं जीतते हैं, वो जिताते भी हैं, और भगवान तो भक्तों के सामने हारते, वो नहीं टिक सकते। और ये भी देखा गया है, जब भी जब हम भक्त चरित सुनते हैं तो हृदय में बड़ा उमंग, बड़े उत्साह, बड़े बल प्राप्त होता है, लगता है कि अरे वो क्या, हम क्यों नहीं कर सकते, 5 साल के बालक वो जब कर लिया तो हम नहीं कर पाएंगे क्या, एक साहस आता है, एक आशा बनता है। लेकिन भगवान कुछ किया, अरे भगवान तो भगवान है, हम कहां है, वो तो केवल आसान होपलेस केस। लेकिन उनके बारे में सुनने से होप अगेंस्ट होप है, इसलिए इतने प्रेरणादायक, इतने बलदायक, भक्ति में इतने उत्साह प्रदान करता है। इसलिए ये दोनों चरित्र, बाल भक्त के चरित्र, भगवान ने, भगवान तो भगवान ने भक्तों के समाज में समादृत करने के लिए स्वयं सत सत बार श्रवण करते थे कि इनमें जितनी भक्ति के बल मिलता है, जितने साधन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, बाकी किसी में नहीं। तो उन प्रसिद्ध बाल भक्तों में से अन्यतम है श्री ध्रुव। जब मैत्रेय मुनि विदुर को बोलते बोलते ब्रह्मा के सृष्टि से अब अधर्म का वंश वर्णन करने लगे, तो बोलते बोलते बोले कि इस प्रकार से विनाश होता है अधर्म के कारण, लेकिन कोई इससे बचना चाहता है, निवृत्त होना चाहता है, तो पुण्य के आश्रय करना पड़ेगा। तो अभी तक सृष्टि में से जितने महान महान पुण्यात्मा राजा हुए, उनमें से श्रेष्ठ अन्यतम पुण्यात्मा महाराज श्री ध्रुव जी का, ध्रुव जब राजा बने और शुरू से ही इतने पुण्यवान हुए, बचपन से ही भगवत कृपा प्राप्त कर ले, भगवत आशीर्वाद प्राप्त कर ले, भगवान को साथ मिले, तो फिर आगे चलकर तुम का रिकॉर्ड कर कहना है क्या। तो इस प्रकार महान पुण्यात्मा राजा से ध्रुव का चरित सुनने के लिए व्याकुल हो उठे, तब मैत्र जी ध्रुव चरित आरंभ करते हैं कि स्वयं वो मनु जो ब्रह्मा के वंशज है, भगवत अंश के अंश है, उन स्वयं वो मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र हुए थे, उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तमपा। उन प्रियव्रत और उत्तमपा से वो प्रियव्रत बड़े थे, उत्तमपा छोटे थे। प्रियव्रत के चरित्र वर्णन न करके तुरंत उत्तमपा के वर्णन किया, क्योंकि ध्रुव का वह चरित्र है। ध्रुव की कथा कहने के लिए लोभ इतना बढ़ गया कि बड़े पुत्र को छोड़ के छोटे पुत्र दूर आ गए, उत्तमपा के वंश वर्णन करने लगे। तो उत्तमपाद के वंश वर्णन करते करते कहते हैं कि महाराज उत्तमपाद उनके दो रानी थे, जो बड़ी रानी थी उनका नाम थी सुनीति, छोटी रानी जो बाद में शादी हुई उनका नाम थी सुरुचि। नाम से ही काम का पता चल सकता है, एक नीति में सु है, एक रुचि में सु है। नीति कोई नीतिवान पुरुष जानते हैं, बड़े नीतिवान है, नीति से काम करता, अनीति काम नहीं करता, अन्याय नहीं करता, बड़े नीतिवान है। तो नीति में जो सु है बहुत अच्छा है, अच्छा नीति नीतिवान व्यक्ति है। इसी प्रकार नीति में सु है सुनीति, बड़ी रानी, लेकिन नीति में तो सु है लेकिन रुचि में नहीं। रुचि में भोग पसंद, आप अच्छे खाना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, सब अच्छे इंद्रिय तृप्ति के साधन से यह रुचि। इस प्रकार में शरीर को अच्छा सजाना, अच्छा भोग करना, अच्छा प्रकार के व्यसन करना, इस प्रकार रुचि जिसका है, नहीं नहीं ये नहीं, ये वाला अच्छा रुचि। अरे खिचड़ी क्या खाएं, हलवा परिवार खाने में रुचि, इस रुचिकर पदार्थ में भोग वासना में जो अच्छे हैं वो रुचि में सु है, सुरुचि है, भोगी है, और सुनीति रुचि भोग में नहीं है, नीति में नहीं। तो उनका स्वभाव भी इस प्रकार था दोनों माताओं के, जो रुचि में सु है उनके शरीर को सजा करके तो रखेगी, बड़े आपने प्रस्तुत करेगी बड़े अच्छा आकर्षक, लेकिन जो नीतिवान है वो इसे कॉस्मेटिक्स ला करके अपने मेकअप ढंग नहीं करेंगे, वो अपने स्वभाव से सुंदर है, केवल झूठे मेकअप से सुंदर नहीं है, ये स्वभाव से सुंदर है। तो इस प्रकार उत्तमपाद जो साक्षात ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी पर है, वहां भी सृष्टि के आदि में भी ये दिमाग इसी प्रकार काम करता था, उन्होंने नीति को आग्रह न करके रुचि के पीछे पड़े। छोटी रानी सुरुचि देखने में जो सुंदर थी, गुण नहीं थी, केवल रूप थी, रूपवती थी, गुणवती नहीं थी, उनके प्रति आकर्षित हुए और उनके बन करके रहे। यद्यपि दोनों रानी से उनको दो पुत्र प्राप्त हुए थे, बड़ी रानी सुनीति से एक पुत्र उनको प्राप्त हुआ था जिनका नाम था श्री ध्रुव, उसके बाद में छोटी रानी से एक पुत्र भी हुआ उनका नाम था उत्तम। दोनों की उम्र लगभग समान था, लगभग 5 साल की उम्र के दोनों बेटा थे, दोनों राजपुत्र है, राजघराना में जन्म हुआ है। आजकल के राजा है नहीं, वो तो आदिराज ब्रह्मा जी के तीसरी पीढ़ी पर है, माने पूरे संसार की राजा, मनुष्यों की राजा उत्तमपाद ने मनुष्य पुत्र उनकी कितनी बड़ी साम्राज्य, कितनी बड़ी व्यवस्था उनका होगा, और उनके जो पुत्र होंगे राजपुत्र किस प्रकार उनके पालन पोषण, कितने नौकर वाकर दास दासी होंगे, जन्म से ही तो सोने की पालनी पर सोने पे चाहूंगे, तो क्या क्या नहीं होगा। मनु महाराज कोई छोटे मोटी है कि ये कस्बा के राजा है, ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं उनके सामने, ब्रह्मांड के राजा लोकपति, इतने बड़े राजा है, किसी उनके पुत्र है रुद्रम। किस प्रकार व्यसन से, कितने प्रकार ढंग से उनका पालन पोषण हुआ होगा। तो दोनों बेटा एक बार राजभवन में जाकर के खेल रहे थे। ये साधारण देखा जाता है, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब एक उम्र वाले होते हैं तो एक साथ मिलकर के खेलते हैं, और उनका एक स्वभाव है, खेलते खेलते वो 5-10 बच्चे खेलते हैं, एक बच्चा जाकर कहीं बैठ गया, सब दिखाया मैं यहाँ बैठ, सब बोले हम भी बैठेंगे, एक बच्चे कुछ फूल ले ले हम भी फूल लेंगे, सब दिन हम कहेंगे, कोई एक मिठाई वहां भी मिठाई खाएंगे, है ना, सभी स्वभाव एक ऐसा होता। तो दोनों बेटा पिताजी के भवन में खेल रहे थे, तो खेलते खेलते कुमार उत्तम ने क्या मन में आया, जाकर पिताजी बैठे थे अपने आसन पर, राज सिंह आसन पर, जाकर के पिताजी को हाथ उठाया बैठने के लिए, तो पिताजी प्रेम से अपने बेटा को गोद में ले लिए, लेकर उन्होंने बैठे थे राज सिंह आसन पर, अपने गोद में बैठा लिए बेटा उत्तम को। तो उत्तम फिर बेटा के सब फिर चिल्लाया, अरे देख मैं बैठा हूँ कहाँ, देख, अरे देखने सुन तो मन भी करेगा, बोला तेरा बाप है मेरा भी तो बाप है, तो दौड़ के वो भी आया, तू यहाँ पर बैठा, आकर के वो भी यहाँ था, पापा पापा मुझे भी ले लो, अपने पंजा उठा उठा कर, हाथ उठा उठा कर, मुझे भी ले लो, चढ़ नहीं सकता छोटा बच्चा है, रुचो आसन उनको जैसे उठा के लेकर बैठा दिया अपने गोद में, वो तो मुझे भी उठा के बैठा, सोचने के लायक बात है। जन्मदाता पिता उनके सामने ध्रुव महाराज को ऐसे नालायक लगता है, खूब देखने में सुंदर थे, विचक्षण बुद्धि संपन्न थे, जैसे गुणवान थे वैसे रूपवान भी थे, इतने सुंदर गुणवान रूपवान पुत्र, 5 साल के बेटा, और आप पिता है जन्मदाता पिता, आपके सामने आकर के दुख प्रकाश करके बड़े अच्छे से आपको तोतली बोली से रिक्वेस्ट करे कि पिता मुझे बाप मुझे बाप पिताजी मुझे ले लो आपके गोद में, पंजे उठाकर प्रार्थना करे, कौन ऐसे पिता है जिसका हृदय मचल नहीं जाएगा इस बेटा को उठाकर गोद में ले ले, नहीं होगा निश्चित रूप से। उत्तम बात के हृदय भी इसमें मचल आया था, वो चाहते थे मैं भी मेरे बेटा को उठाकर बैठा, ये बैठा इस उसको यहां बैठा दो, क्या है दोनों बेटक मेरे, चाहते तो थे बहुत, मन में विचार भी आया लेकिन कर नहीं पाए। एक पिता होते हुए आपने पुत्र और पुत्र बोला बड़े स्नेह से ममता से पिता पिता करके, वो पूर्ण आशा रखा था कि जरूर मेरा पिता मुझे उठा लेंगे, वो मन में कभी सोचा भी नहीं था, एक पॉइंट भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि मेरे पापा मुझे गोद में ना ले, कितने बार लिए भी होंगे, इसलिए उनका पूरा विश्वास था, अगर पहले से उसको दूर मरवा करता कभी नहीं जाता, ऐसा नहीं हुआ, पहले से कई बार उनको गोद में लिए हैं, उनको चुंबन आदि दिए हैं, गोद में बैठाए, बहुत बात्सल्य स्नेह भी किए हैं उनके साथ, अपना बेटा तो उनका पूरा विश्वास था मेरे पापा मुझे गोद में लेकर बैठाएंगे, इसके लिए जब मेरा भाई बैठा मैं भी नहीं बैठूंगा, छोटा बच्चा है उनका, इतने पूर्ण विश्वास के साथ पूरी आशा करता था कि पिताजी मुझे लेकर बैठाएंगे, तो इसलिए बड़े आनंद से उत्साह से हाथ बढ़ा करके प्रार्थना कर रहा था, अपने बोली से बोल रहा था, और पिताजी चाह कर भी नहीं लिए, बेटा का ही स्वभाव है, छोटे बच्चों का स्वभाव है, चाहेगा दे दो चॉकलेट दे दो मिठाई दे दो, मांगेगा नहीं देंगे तो रोएगा, उनका पास यही अस्त्र है ना, वही भेटो चला देंगे तुम। तू भी रोया, उत्तम ने रो रो करके प्रार्थना कर रहा था, उठा उठा कर ले लो ले लो। इस हालत में भी कैसा निष्ठुर हृदय वाला पिता था, बैठा था स्वयं उच्च आसन में, उनका बेटा रो रो करके ऐसे ऐसे हो रहा था, उठा उनको देखा मुंह मोड़ दिया, चाहता तो था देख कर उठा, क्यों? बहुत बड़े कारण, क्योंकि इस घर में केवल वो तो बेटे नहीं खेल रहे थे, एक और चरित्र थी इस भवन में, उनके छोटी पत्नी सुरुचि थी, कुछ नाम कर रही, इसी के भय के कारण वो इधर है कि देख ना ले, मुझे डांट के कुछ कहेगी तो। पहले कितने बार उत्तम को ध्रुव को गोद में लिए होंगे, जब वो दूसरे छोटी रानी नहीं होती तब ले ली बहुत अच्छा से पिता पुत्र मिलन, लेकिन आज तो बिल्कुल ये कमरा में है, आप अगर देखेगी तो मेरे घटिया खड़े करते। ये भय के कारण पहले जो उनको देखे थोड़ा मन में आया था, जब देख ली को है बिल्कुल मन मुड़ कैसे बैठे, वो ऐसे किए कि उनको भान ना चले छोटी रानी की मैं उनके प्रति कोई आशा रखता हूँ, कोई मेरा कोई संबंध नहीं उनसे, इस प्रकार से किया। उसको देख कर तो बेटा और नारी ही क्या कर रहे, पिताजी मेरे और देखते भी नहीं है, बधिर तो नहीं है ना, सुनते रहे हैं, अभी मुझे देख रहे थे, मुँह क्यों मुड़े, इसी क्या नाटक कर रहे हैं, तो वो तो डरा हुए, ये क्या पिताजी के मेरे प्रति व्यवहार क्या है। इस पिता और पुत्र की इस प्रकार भाव में पिताजी को कितने कष्ट होगा, जितने कष्ट पुत्र को होता है इतने कष्ट पिता को भी होता है, लेकिन छोटा बेटा को पता नहीं कि कारण क्या है, वो भी 5 साल की उम्र, उनको पता नहीं कि माता में भिन्नता होता है, कि माँ दोनों में कितने ईर्ष्या बैठा हुआ, ईर्ष्या का परिचय नहीं हो सकता। ये मेरे विमाता, मेरी छोटी माँ, मेरी माँ आपस में कितने होड़ रखे हैं, उनको ये कहाँ पर किसे पता था बेचारा, वो तो बोलता था पिता है मेरे ना, तो महात्मा है, वो भी छोटी माँ है, वो भी बड़ी माँ, ये मेरी माँ, वो भी छोटी माँ, दोनों को माँ दृष्टि से देखता था, दोनों के प्रति वो माँ बोली माँ होता, सबको समान था, बोलते ये भी माँ है, ये भी माँ है, उनके मन में कहीं द्वेष ईर्ष्या कुछ भाव नहीं था, बच्चा उनके मन में नहीं था, लेकिन उनके मन में तो भरी पड़ा है। महाराज उत्तमपाद के मन में अपने छोटी स्त्री के प्रति बहुत आकर्षण है, उनके रूप के प्रति, और अपने बड़ी पत्नी सुनीति के प्रति कोई लगाव, आप टोटली उनके प्रति आकर्षण। अब इस आकर्षण के कारण वो स्त्री के इतने गुलाम बन चुके थे कि अगर वो स्त्री मन खराब कर ली, आज रूढ़ ना जाए, तो इसी कारण से आपने पुत्र को भी रो रो कर जहां बड़ा पत्र गोद में ले लो, उसको भी नहीं दिए। इस कारण था तब इतने में वो सुरुचि जो घर में थी वो मुड़ी देखा, एक दृष्टि से उत्तम पाद को दृष्टि बढ़ाओ तो बिल्कुल सामने बढ़ते देखे, बिल्कुल मैं देखा नहीं उनको, आप ये मत सोचो कि मैं तो आपका ही हूं, उनका नहीं। इस प्रकार अभिनय करके देखा है। तो सुरुचि ने समझ ली ये राजा तो मेरे पूरी पूरी बस में है, मैं उसको नचा सकता, नचा सकती हूँ, उड़ते उड़ते बैठते बैठते इतने मेरे भगवान के अपने बेटा रो रहा है, देखता तक नहीं है मेरे भाई के कारण, बिल्कुल समझ गई उन्होंने। तो बोला ये तो नालायक है, उसको मैं क्या डांटूं, डांटने के लायक नहीं, डर गया मुझे देख करके, मुंह मोड़ गया, लेकिन ये बच्चा नहीं मान रहा है, उनको बार बार बोल रहा है कि देखो। तो उनके अभी उनके सामने ये छोटा बच्चा ध्रुव को डांटने लगे, सुरुचि ने नारी दुष्ट बालक ये क्या कर रहा तुम्हें क्यों, तो मुंह मोड़ कर देखा, बोला माँ मैं भी पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ, उत्तम भैया बैठे हैं हम भी बैठेंगे, बोला नहीं तू नहीं बैठ सकता है, तेरा यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, तू क्यों इस अधिकार प्रयास कर रहे, वो तुझे बैठा नहीं सकते, आप नहीं बैठ सकते। सुचना बोला क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, जो उत्तम बैठा है तो मैं ही बैठूंगा, उत्तम का भी पापा है मेरा भी पापा है, तो मैं क्यों नहीं बैठेगा पापा की गोद में। इस बात के उत्तर देते हुए रानी सुरुचि बोल रही है, अरे मूर्ख तुझे पता नहीं, केवल पापा के बेटा होने से तू पापा के बैठने से अधिकार नहीं है। इस सिंहासन में आपके पापा की गोद में बैठने के लिए अधिकार चाहते हैं तो केवल पापा के बेटा होने से नहीं होगा, तो फिर मेरा बेटा होना पड़ेगा। केवल बाप के होने से नहीं होगा, मतलब मैं भी तो माँ के बेटा हूं। बोला नहीं, मेरे बेटा होना पड़ेगा, तुम सुनीति के हो, इसलिए लायक नहीं। भले तेरे पिता उत्तानपादे महाराज हैं, लेकिन मैं तेरा मां नहीं, इसलिए तेरा अधिकार ना वो बैठा सकते ना तो बैठ सकता। अच्छा ये बात है, तो नहीं बैठ सकता। अगर तू बैठना चाहता है, इच्छा ना बैठना चाहता, अगर तू बैठना चाहता है फिर क्या करना पड़ेगा, ना तो फिर जाओ। अब तू तो उनका बेटा हो चुका है, मेरा बेटा जब तक नहीं बनेगा तो तू बैठ नहीं सकता, तो मेरा बेटा बनने की आपका बेटा बनने क्या करना पड़ेगा, ना जा करके परम पुरुष भगवान श्री हरि के तपस्या करो, भजन करो, उनको प्रसन्न करो, फिर प्रसन्न करने से प्रसन्न करके मेरे बेटा बनो, मेरे पेड़ से जन्म लोगे तब जाकर, मतलब कहने का असली तात्पर्य समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, कह रहे कि तुझे मरना पड़ेगा इस शरीर में, तो तू मेरा बेटा हो नहीं सकता, इस शरीर में तू मेरा बेटा कैसे हो सकता, मेरे पेट से तो जन्म हो नहीं सकता, तो मेरे पेट से जन्म होने के लिए तभी तू जाओ, जाके मरो, मरने के बाद मेरा बेटा होगा कुछ गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये तो जरूर होगा, तेरे माँ तो रो रो कर दुखी हो जाएगी ना, तू मेरा बेटा बनेगा, बड़ा होगा, राजा बच के रहेगा, बेटा बड़ी यही नहीं होगा, लेकिन तेरे माँ सुनीति वो दुखी होकर रो रो करके हद हो जाएगी, उसके रोना मेरे सुख है, मैं यही देखना चाहती हूँ कि दुखी होकर रोते रहे, तू मर जा। अरे कोई अगर जाएगा भगवान को तपस्या करे, प्रसन्न करे, तो और कोई नहीं मांग मांगेगा, ये मांग मांगेगा तेरे जैसे कलंकनी राक्षसी के पुत्र से फिर जन्म होने के लिए, लेकिन वो आशा करते ध्यान मांगे भगवान प्रसन्न वरदान दे, जाओ उनके बेटा बनो, लेकिन ये तो एक समझ रही थी मेरा बेटा बनो, लेकिन कम से कम तो तुम्हारे और उनको रहेगी दुख हो। राजा को ऐसे पटाई थी कि उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति की तो दासी की नजर में नहीं देख रहे थे, ऐसे भावना करते थे कि आप सुनीति को अपने पत्नी के रूप में परिचय देने में लज्जाबोध करते थे, इस हाल इतने में संतुष्ट नहीं थी, इतनी ईर्ष्या के प्रभाव कि एक लौती बेटा वो भी मर जाए, ये चक्रांत इस प्रकार की बात कर, इस प्रकार बोली। अब वो मुंह मोड़ कर पिताजी को देखा, बोली छोटी माँ ऐसी क्या बोल रहे, आप कुछ बोलिए अड़ी दिस, लेकिन पिताजी तो हैं पैक है, वो तो उनके चाल में ऐसे थे कि वो आपने तो बिल्कुल इस मैदा, तो उनका जो थोड़ा आशा था भरोसा था कि पिता माता के ऊपर मिट गया। 5 साल के नादान बच्चा इस प्रकार के व्यवहार, इतने ईर्ष्या के व्यवहार, दोनों पिताजी भी कोई बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, और वो डांटती चली जा रही है, इस प्रकार से बहुत चोट लगा उसको, क्षत्रिय बालक, क्षत्रिय के हृदय में जो इतने बड़े आघात, इतने बड़े अपमान उसको संभालने का, जो बहुत दुख होता है, रोया तो था, अभी उसके ऊपर वो इतने बड़ी अपमान लांछना, बहुत जोर से शिशक शिशक करके रोने लगा। इस रोना देख कर भी कि ये पत्थर हृदय वाला उत्तान पाद भी पिघले नहीं, वो भी कुछ नहीं बोले, वो तो निष्ठुर हृदय थी ही, मुंह मोड़ के चल गए। हेल्पलेस, ना पिता कुछ बोल रहा है ना कर रहा है, माता तो डांटी जा रही है, और मेरा भाई उत्तम भी बैठ करके हंस रहा है, वो भी देख रहा है मेरे दुख को रोना को, क्या हो रहा है मेरे पति से। इसी प्रकार के इतने दुखी, हर प्रकार से हेल्पलेस होकर दुखी होकर के बहुत शिशक से रोते रोते मुंह मोड़ करके बच्चा हो जाएगा, कहां कहां तक जाएगा, माँ के पास। और भाई पिता तो गया छोटी माते से, कर दौड़ करके माँ के पास आए, और माँ के पास आएगी आएगा क्या, क्या राजभवन ने क्या क्या खबर चल रहा है, बहुत दासी दासी थे दास, वो आकर के तुरंत मैसेज दे दिए थे, बड़े जानी सुनी थी, देखो अगर बेटे को किस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है, इस प्रकार इस बात को सुन करके सही राजा कुछ नहीं बोल रहे, इस प्रकार दुखी हो रही थी, दुखी हो रही थी, इतने में उत्तम रोते रोते दौड़ते दौड़ते आ रहा, दौड़ते दौड़ते आया, इतने दुखी इतने क्रोधित, छोटा बच्चा जो गुस्से में पंचम हो जाता है, और क्रोध में अपमान में लांछन में उसे सब प्रकार मिलजुल करके इस प्रकार उनके मुख दिखाई पड़ता था, इस प्रकार रोना, तो उसको देख करके उनकी माँ सुनीति और धैर्य नहीं रहा, तुरंत उनको बेटा को अपने गोद में ले ली, सिमट ली छाती में, क्या कर सकती है, जो रोना शुरू हुआ था बढ़ गया, दोनों माँ और बेटा मिलकर के अभी रोने ही लगे, उनका हाथ भी क्या था, वो भी रोना बढ़ गए, दोनों मिलकर के रोने लगे, और जो आसपास में दास दासी देख रहे थे उनको भी दुख लगा, वो भी रो पड़े, इस बात को जो सुनेगा वो भी रोए, सब रोने लगे, लेकिन रोने केवल रोने से कुछ तो होने वाला हुई नहीं, थोड़ी देर में क्योंकि नीति में सू थी, नीतिवान थी, आपने को संभाली, संभाल करके गोद से बेटा को उठा करके बोला बेटा मैं भी रो रही हूँ, आप भी रो रहा है, रोने से कुछ नहीं होगा, फिर माँ करके फिर रोने लगा, बेटा बोला देखो बेटा आपका मन में जो आक्रोश भाव है आपके छोटी माँ के प्रति, सबसे पहले उसको निकाल दो, मैं तेरे देख रहा हूँ कितने क्रोधित हो रहा है, जैसे कोई बड़े विषैली सांप है, कोई बूट पहन करके उनके पूछ में चढ़ जाए, कुचल दे उसको, बिल्कुल तीन मिनट गुस्सा में आ जाए, पूछ पर खड़ा हो जाए एक बार, इस प्रकार से चोट खाया हुआ सांप जैसा तड़प रहा था गुस्से में, रूप कुमार है और रो रहा था, कुछ नहीं कर रहा, तो हम बोले पहले माने नीति ना नीतिवान थी ना, तो पहले नीतिवाणी निकली, बेटा किसी के ऊपर क्रोध मत करो, विशेष करके आपकी छोटी माँ के ऊपर गुस्सा मत करो, सबसे प्रथम उपदेश, एक दुखी माँ जिनको अपने पति ने छोड़ दिया, इतनी बड़ी पदवी थी, बड़ी रानी थी पूरे राजघराने में, आज दासी के दर्जा पर नहीं है, राजा ने उसको देख नहीं रहा है, तो पूछ नहीं रहे, और उनके बेटा के प्रति इस प्रकार व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इतने दुख, पारिपार्शिक व्यवहारिक आंतरिक मानसिक हर प्रकार दुख से जर्जरित चलते हुए भी उनके मुख से अनीति नहीं निकला, नीति का सार निकला कि गुस्सा मत करो बेटा, विशेष करके आपके विमाता सुरुचि प्रति क्रोध मत करो, क्यों क्रोध नहीं, क्योंकि अगर उनके प्रति क्रोध करके कुछ उनके दुख आचरण कुछ इस प्रकार आचरण करो, तो जो जो दुनिया में संसार में लोग दूसरे को दुख देते हैं, दुख देने के लिए विचार करते हैं, तो तो उनके दुख रिजर्व होकर रहता है, वो देना दे उनका तो दुख बने नहीं बने, जो दूसरे को दुख देना सोचे तो उनका दुख उसी समय रिजर्व हो जाता है कि उनको मिलेगा निश्चित, वो देंगे नहीं देंगे उनको तो मिलेगा। इसलिए बेटा यही नीति है, यही नीति है समाज की संसार की, कि दूसरे के ऊपर दुख देने के लिए विचार करोगे तो तुझे ही मिलेगा। तो इसलिए किसी को दुख देने का विचार मत, क्रोध मत करो उनके नाम से, क्रोध नहीं करोगे ऐसा बात ना नहीं, वो जो बात कहा बिल्कुल सत्य बात कही, तेरे छोटी माँ ने तुझे जो बात कही बहुत ही मूल्यवान बात, तेरे लिए बहुत हित कर बात है, सो कैसे ना तुझे उन्होंने बोली कि तुझे सबसे प्रथम ये अधिकार प्राप्त करने के लिए भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना पड़ेगा, एक आदर मानने का, बस मैं भी यही कह, वो जो बात तुझे कही भले ईर्ष्या के कारण कही हो भले किसी के कारण कही हो, देखिए जो नीतिवान है उनका दृष्टि हमेशा सू रहता है, सुनीति के ऊपर, कितनी भी खराब चीज हो उनसे अच्छा गुण निकालेगा, लेकिन जो रुचिवान हो कितनी अच्छी बात हो उनकी खराब बात निकालेगा। दो प्रकार के मक्खी देखते हैं हम, देखते हैं एक साधारण मक्खी और एक मधुमक्खी, है ना, यहाँ है ना नहीं पुणे में दो प्रकार। तो जो साधारण मक्खी है उनके स्वभाव को देखिए कि उनका क्या स्वभाव है ना, नहीं यहाँ मक्खी काली बड़ी में थोड़ा उल्टी करके डाल दो, नाक से निकाल करके डाल दो, कचरा मचरा मानी बहुत जो गंदगी फैला दो, देखो इन्विटेशन मिला आ जाएंगे फटाफट, है ना, जहां ऐसी चीज डाल दो आ जाएगा ना, पता नहीं कहां से आए आ ही जाएंगे फटाफट, वो ढूंढते रहते हैं पूरे जी जान लगकर ढूंढने कहां पर गंदगी है, कहां पर खराब चीज है, दुर्गंध दुष्पदार्थ है, वही तो उनका प्रोजेक्ट है, लाइफ प्रोजेक्ट है, वही ढूंढते रहते बस। अरे भाई यही दुर्गंध दुष्पदार्थ के ऊपर जाओ उसमें जाकर के वही संतुष्ट होना, इतने भी नहीं, उनका ये आदत है गंदगी के ऊपर बैठेंगे खराब चीज में बैठ करके केवल बैठ वही सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसको गंध को लेकर के अच्छे आदमी के ऊपर भी उनको भी खराब है ना, उनका क्या गुण है ढूंढ ढूंढ करके खराब चीज को ढूंढने कहां है, उस खराब को ला करके फैलाएंगे प्रचार करें, वही उनका पिचिंग मोमेंट है, उसी को फैलाएंगे, तू अच्छा क्यों तुझे खराब यहां ना करके यहां बैठेंगे, सबको खराब करना चाहिए, समझ लेना उनका स्वभाव, उनको कभी अच्छा अगर साफ सुफ क्लीन करवाएंगे घर वाड़ी बिल्कुल टिप टप क्लीन झाड़ू पोछे साफ करो बोलेंगे गया हमको नहीं खिंचा, वो नहीं आ पाएंगे, जैसे गंदगी शुरू कर दे आएंगे, और तो उसी के उसको ढूंढते रहते हैं वही आएंगे। और दूसरे एक मक्खी मधुमक्खी, भले वो गंदगी के पास नहीं जाता, फूल के पास जाते हैं, कोई भी फूल भले देखने में भी अच्छा ना हो, सुगंध भी ना हो, कांटेली हो, कांटा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर अगर रस है वो बाहर चाक चमक के नहीं देखेगा, रंग नहीं देखेगा, गंध नहीं देखेगा, परिस्थिति परिवेश नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, उसका अंदर एसेंस है कि नहीं, रस है कि नहीं, सरस है तो रस को ही खींच लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये है गुण दृष्टा और ये है दोष दृष्टा, वो हमेशा दोष को ढूंढ ढूंढ करके निकालेगा और ये ढूंढ ढूंढ करके गुण निकालेगा, ये दोनों वृत्ति हम लोगों में पाया जाता है, हम लोग कितने बड़े भले हो गए, कितने भले आदमी अच्छे आदमी हो ढूंढ ढूंढ करके उनके दोष निकालेंगे, खराब गुण है उसी को निकाल हाईलाइट करेंगे उसको। हाँ मनुष्य में तो भगवान तक नहीं छोड़े, भगवान राम जो मंगल भवन अमंगल हारी, ऐसे भगवान राम को भी नहीं छोड़े उनको भी दोषी बनाते है ना। इतने दोष दृष्ट में एक्सपर्ट हैं अवगुण निकालने में, छोड़े नहीं उनको। अगर ये स्वभाव रहे तो कैसे सुधरता है, हमेशा केवल दोष गुण को देखेंगे। तो अगर हमको सुधरना चाहते अच्छे बनना चाहते हैं तो इस स्वभाव को बदल करके गुणदृष्ट आना चाहिए, गुण को देखना चाहिए। भले कितने खराब चीज क्यों ना हो उसमें कुछ भी अच्छा गुण तो होगा। जैसे मधुमक्खी कांटेली दुर्गंध पुष्प में भी जाकर बैठ के रस निकाल लेता है, हम नहीं निकाल सकते। आजकल समय बहुत आगे जा चुका है, बहुत हाईटेक हो चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उनको अगर बताओ कभी कि भैया ये इतने सारे फूल है उनसे थोड़ा मधु निकाल सकते हैं आपने, फूल बगीचे से जाकर दो चार ग्राम मधु थोड़ा लाओ तो 50 ग्राम बटल भर के नहीं 10-20 ग्राम निकाल लो। अगर वो ट्रायल भी करें अपने पूरी बुद्धि शक्ति और जो उनके पास होगा जो सब सामग्री है ना, नहीं उनका पूरा लैबोरेटरी लेकर के अगर जाए फूल बगीचा में मधु निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे जाकर के तोड़ेंगे फूल, बिना तोड़े कुछ कर पाएंगे, सारे फूल तोड़ डालेंगे, सारे फूल पेड़ से तोड़ डालेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, मरोड़ डालेंगे उसमें, तो ग्राइंडिंग कर डालेंगे, पीस पास करके चटनी करके निचोड़ देंगे, बोले निकाल जूस और उसको मुंह में डालेंगे थू थू करेंगे, यही निकाल पाएंगे। हमारे यहां तक शक्ति है, लेकिन एक मक्खी कोई इंजीनियरिंग स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, खाता कलम पेन कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं लिया है, कुछ उसका बस ग्रेजुएशन डिग्री कुछ नहीं। वो जाएगा पेड़ से फूल को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, वहीं पे रहेगा फूल। अरे तोड़े ना तो बात छोड़ो, कोई पंखुड़ी को भी इधर उधर करेगा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ भी समझ नहीं करेगा, जैसे कुदेश एजिटेट रहेगा चुप से उसको ऊपर बैठेगा कुछ क्षण तक, ज्यादा समय नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये कक्षता उनके पास कुछ क्षण में वो जो निकाल लेगा उसको अब टेस्ट करो, शहद टेस्ट किया ना कैसे लगा, हम अपने सारे बुद्धि वृत्ति लगा कर कर पाएंगे। गुण दृष्टा वो गुण पहचानता है, गुण को ही निकाल लेता है सारे गुण के बीच से, ये स्वभाव। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि अगर आप गुण देखना चाहे प्रत्येक व्यक्ति में गुण को देखना चाहो आपका सुधरना शुरू हो, बहुत बड़े स्वभाव है किसी के अंदर गुण को देखना, गुण को देखेंगे। लेकिन क्या अपने मक्खियों के अंदर कुछ गुण निकाल सकते हैं, जो गंदगी ढूंढने वाले मक्खी और जो मच्छर मलेरिया फीवर फैलाने वाले, ऐसे मक्खी और मच्छर का भी कुछ गुण निकाल सकते हैं अपने, क्या अच्छा गुण है उनके अंदर कोई बोल सकते हैं, तो फिर कैसे गुण दृष्टा बनेंगे। उनमें भी गुण निकालना पड़ेगा, हाँ उनमें भी अच्छा गुण है, ये उपकार कर रहे हैं। कोई पॉइंट बता सकते हैं क्या उनके पास सदगुण है, क्या समाज के ऊपर भगवान किसी को बनाए तो भाई कुछ तो होगा, क्यों बनाए हमेशा दुष्पदार्थ ढूंढते और दूसरे को बुखार करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। भगवान जो सभी के हितकारी है उनको बनाए क्यों नहीं, उनका भी बहुत अच्छा गुण है, उनको भी गुण निकालना पड़ेगा और उपकारी भी है, बड़े कल्याण करते सब। अभी हमारा बुद्धि नहीं जाता दौड़ कर पाते, लेकिन है सोचो तो आपको मिलेगा। इस प्रकार के सुरुचि जैसे दुष्चरित्र स्त्री जो कितने दुख देना चाहती थी सभी को, अपने पति को वश में करके, छोटे बच्चा को कितने डांट करके, उनको रुला करके कितना हाल कर दिया, और उनके इकलौती मां बड़ी रानी कितनी अच्छी गुण थी उनकी, उनको बेटा को मार करके उनको और दुख देना चाहती थी। इसी प्रकार के दुष्चरित्रा सुरुचि जैसे स्त्री को भी उनके अंदर गुण निकाल करके सुरुचि अपने वाणी प्रथम से कहते बेटा उनका दुख मत करो, क्रोध मत करो, वो जो बात कही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैसे उसको सही प्रमाणित करेगी तो हम कल सुना। हरे कृष्ण।
किसी का कोई प्रश्न है?